نبدأ بتصوير على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کافی سوالات ہیں اور میرے خیال میں یہ آج کا دن تو انہیں سوالوں ہی میں گزر جائے گا. ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا کہ مرشد سے پیار کیے جاؤ، ساری منزلیں خود ہی طے ہو جائیں گی. یہ کون سی منزلیں ہیں، روحانی، دنیاوی یا مرنے کے بعد کی؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تصوف یا روحانیت یا علم لدنی، علم باطنی، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. یہ انسان کی صرف روحانیت کی تربیت نہیں کرتا بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب آدمی بنانے میں مدد کرتا ہے. مرشد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اپنے مرید کے ذکر، اذکار، وظائف و تسبیحات اس میں انہیں گائیڈ کرے، کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے زندگی کا. چونکہ اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی پر محیط ہے پوری طرح، اس لیے اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے. تو جب مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرید کی تربیت حت الوسع اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، تو چونکہ اسلامی تعلیمات انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر رہی ہیں، تو مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرید کی پوری زندگی کے تمام پہلو جو بھی ان کے مطابق اس کی تربیت کر دے. مرشد اپنے مرید کی ٹریننگ کرتا ہے، سوشل ریسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے بارے میں مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، اس کی فیملی کی ریسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے سلسلے میں مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، اکنامک اینگل سے. غرض سے ہر ہر طریقے سے اپنے مرید کی تربیت کر دے گا، اس کے مینرز، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے بیہیویئر، اس کے ایٹیچیوڈس، ان سب کی وہ تربیت کرتا ہے. تو جس انسان کی زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے کہ اس کے ایٹیچیوڈس ٹورڈز لائف پازیٹیو ہو جائیں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے مطابق ہو جائے، انسان ویل مینرڈ ہو، ویل ایڈوکیٹڈ ہو، مجسم علم ہو جائے، دوسرے تمام لوگوں کے حقوق کو نہ صرف پہچانتا ہو، انہیں ریلائز کرتا ہو، بلکہ ان حقوق کو حت الوسع ادا بھی کرتا ہوں اور احسن طریقے پر کرتا ہوں، لیکن اس کی اپنی ذات کا دوسرے پر کوئی کلیم نہ ہو، تو ایسا شخص کس کو پسند نہیں آئے گا. اور جب وہ لوگوں کو پسند ہوگا، ان کے دل میں گھر کر جائے گا، تو کامیاب بھی ہوگا. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد سے انسان پیار کیے جائے تو تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، تو منزلیں اصل میں زندگی کے ہر ہر پہلو سے تعلق رکھتی ہیں، روحانی بھی اور مادی بھی. وہ جو حکمت ہے کہ مرشد سے صرف پیار کیے جاؤ، जिस तरह से दुनिया में हम सीखते हैं इल्म को तीन तरीके से, सिखाए जाने से, पढ़ने से और मुशाहदे से, इसी तरह रूहानियत के अंदर मुर्शद अपने मुरीद तक इल्म बतौर खास लेक्चर्स के जरिए नहीं पहुंचाता, वो अपने मुरीद को बिठाकर हर हर तरीके से मुतालिक इल्म और गुथियां बयान नहीं करता, बल्कि इसके अंदर तो इल्म मिलता है मुशाहदे से और नकल से, कि इंसान अपने मुर्शद से चूंकि प्यार करता है और अपने मुर्शद की हर फेल और हर हरकत पर नजर रखता है, ये फितरी अमल है कि इंसान जिससे प्यार करता है उसे आइडियलाइज कर लेता है, और जिसे इंसान आइडियलाइज करता है उसे कॉपी करता है। तो जब इंसान अपने मुर्शिद को कॉपी करने लगता है तो उसके साथ वही चीजें पेश आने लगती हैं जो कि मुर्शिद को उस मकाम पर होते हुए पेश आई थीं, और रफ्ता रफ्ता वो अपने मुर्शिद के पांव के निशान पर पांव रखते हुए आगे बढ़ता जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो अपने मुर्शिद के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है, तो ला मुहाला वहीं जा पहुंचता है जहां मुर्शिद खड़ा होता है। तो यूं तमाम मंजिलें तय हो जाती हैं। अगर किसी से कोई प्यार नहीं करेगा, उसे आइडियलाइज भी नहीं करेगा, उससे दूर भागेगा, और जब दूर भागेगा तो फिर उसके अंदर वो चीजें पैदा नहीं होंगी जो मुर्शिद के अंदर हैं। यूं कहा जाता है कि मुरीद अगर कुछ भी ना करे, सिर्फ अपने मुर्शिद से प्यार करता जाए, तो मंजिलें तय कर लेता है, क्योंकि उस आदमी के अंदर मुर्शिद किसी इबादत की पाबंदी आएगी, मुर्शिद की किसी पाकीजगी आएगी, मुर्शिद की किसी पारसाई आएगी, और मुर्शिद ही की तरह वो मुजाहदे करेगा, चिल्ले काटेगा, रियासतें करेगा, मुर्शिद ही की तरह वो खल्के खुदा के साथ नर्म रवैया रखेगा, मखलूक की खिदमत करेगा, दूसरों के काम आएगा मुर्शिद ही की तरह, तो सब काम वो अपने मुर्शिद की तरह करेगा, तो ला मुहाला उसको भी वही नतीजा हासिल होगा जो उसके मुर्शिद को हुआ था। तो यूं वो तमाम मंजिलें तय कर लेता है। दूसरा सवाल बरमूडा ट्रायंगल की रूहानी हकीकत के बारे में है। बरमूडा ट्रायंगल की कोई रूहानी हकीकत नहीं है। किसी एक नशिस्त में बरमूडा ट्रायंगल पर हमारी गुफ्तगू हुई थी, और उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज किया था, कुछ लोग बड़ी दूर की कोड़ी लाए हैं कि जहन्नुम से मुतालिक जो निशानियां रब ताला ने बयान की हैं वो उन्होंने मुंतबिक करने की कोशिश की है, मुंतबिक की नहीं है बल्कि करने की कोशिश की है, कि बरमूडा ट्रायंगल की कैफियत जहन्नुम के बारे में बयान की गई निशानियां हदीस में और कुरान में उनसे मिलती जुलती हैं। तो ख्याल ये है कि शायद जिस जहन्नम का जिक्र रब ताला ने किया है वो ये बरमूडा ट्रायंगल ही है। ये मैंने गुफ्तगू के दौरान एक हल्का सा इसका जिक्र किया था। इसकी असल हकीकत क्या है अभी तक ये भेद नहीं खुला, लेकिन कुछ निशानियां उसकी जहन्नम से बयान करदा निशानियों, मसलन बरमूडा ट्रायंगल की तह में टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट उसके करीब चला जाता है जो जहन्नम का टेम्परेचर बयान किया जाता है। जहन्नम के धाने के बारे में जिक्र है तो इसका जो धाना है समुद्र के नीचे वो उससे काफी मिलता जुलता है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई आखिरी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। सिर्फ वो मुंतबिक की गई हैं खेंचतान के उसकी निशानियां बरमुदा ट्रायंगल पर, तहकीक इस पर जारी है, देखिए कल को क्या में आता है। लेकिन इसकी रूहानी हकीकत फिलहाल तो कोई है नहीं, वो तो सिर्फ एक मालूमाती चीज थी जो आपके सामने बयान कर दी थी मैंने, जो भी रूहानी के एंगल से उसका पता चल सकता था वो मैंने बयान कर दिया था उस नशिस में। लेकिन उसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं कि इसकी कोई रूहानी हकीकत है। एक और सवाल है कि अक्सर मुशाहदे में ये बात आई है कि जब कोई पीर साहब किसी मुरीद को बैत करते हैं तो वो सबक पढ़ने के लिए बताते हैं, साथ ही ये ताकीद कर दी जाती है कि आपने किसी और को नहीं बताना, सिर्फ अपने पीर भाई से शेयर कर सकते हैं। हालांकि होता तो वो अल्लाह ताला ही का कोई सिफाती नाम है, तो इसे मना क्यों किया जाता है? जब भी कोई मुर्शिद अपने मुरीद को कोई पढ़ाई किसी बताते हैं, वो दर हकीकत उसकी रूह से मुतालिक रखने वाली चीजों से के नतीजे में वो बताया जाता है। बारहा इस मौजू पर यहाँ बात हुई, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि वो सबक जब बताया जाता है तो इंसान की रूहानी कैफियत के मुताबिक बताया जाता है। इंसान के रूह का जो कंट्रोलिंग वर्ड है उसके मुनासबत से बताया जाता है, इंसान की रूह की खुशबू और इंसान की रूह के रंग के मुताबिक उसको बताया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी दरवाजे पर डिजिटल लॉक अगर लगा है तो उसके कोड का जो 5 हिंसे हैं, 5 डिजिट हैं, उनमें से 3 या 4 आपको बता दिए जाएं, किसी को आप बता दीजिए। थोड़ी सी एफर्ट के बाद अगर इंसान इल्म रखता है तो आखिरी एक डिजिट वो खुद ढूंढ लेगा किसी न किस तरीके से, तो फिर आपका घर अनसेफ हो जाएगा, कोई भी उसके अंदर घुस के चोरी कर सकता है। तो अगर किसी को ये बता दिया जाए कि मैं ये पढ़ता हूँ, वो आदमी अगर थोड़ा सा इल्म रखता है तो वो खुद ब खुद उसे फर्दर स्टडी कर लेगा और वो उस तह तक पहुंच जाएगा। तो फिर इंसान के रूहानी मामलात उस पर वाह हो जाएंगे और उसके लिए आसान हो जाएगा आपके इल्म को गायब करना, आपके पढ़ाई में कोई खलल वाक़े करना। उसके हाथ वो फ्रीक्वेंसी आ गई जिस पर आप रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस या टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो उन्हें जैम कर देगा, उसके साथ प्ले अराउंड कर लेगा जैसे चाहेगा। तो यूं मना किया जाता है कि किसी और से इसका जिक्र मत कीजिए ताकि आपके रूहानी मामलात उस पर खुल ना जाएं किसी तरीके से। तो और इसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं होती रोकने की। अगला सवाल, मज़ारों पर मन्नत के तौर पर धागे बांधना कैसा है? ये एक फरोई मसला है और मैं फरोई चीज़ों पर गुफ्तगू एज ए पॉलिसी ऑफ मैटर नहीं करता, इसको मैं माजरत कर लूँगा इस सवाल का जवाब देने से। मुसलमानों में एक मकतबा फिक्र के हजरात ये कहते हैं कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगें, कभी किसी को दुआ के लिए ना कहिए। जबकि हम अपने बुजुर्गों को जैसे नानी हैं दादी हैं उनको कह देते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए। उस मकतबा फिक्र के लोग ये कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए, खुद दुआ मांगिए, ये माजरा क्या है? किसी के नज़रियात या किसी के बिलीफ पर तो मैं कुछ कमेंट करने का अहल नहीं हूं और न मैं करूंगा, लेकिन किसी दूसरे को दुआ के लिए कहने के सिलसिले में गुजारिश ये है कि सहाबा किराम से साबित है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ के लिए अर्ज किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है अपने साहबियों के लिए। ये तो एक पहलू है। उसमें एक सवाल ये हो सकता है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं तो उनसे तो कहा जा सकता है, लेकिन अपने ही जैसे किसी इंसान से कैसे कहा जाए? तो उसका जवाब ये है कि एक साहबी ऐसी भी हैं जिनसे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए कहा है, हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह साहब से आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ करने के लिए मैसेज भिजवाया था। तो हर वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो आपकी सुन्नत है, मेरे नज़दीक वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई बिद्दत और कोई कबाहत नहीं है। ऐसा काम करने में आंखें बंद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लेनी चाहिए इंसान को। तो किसी भी शख्स से ये कहना कि तुम मेरे लिए अल्लाह ताला के हजूर दुआ करो, मेरे नज़दीक इसमें कुछ नहीं है, ये सुन्नत है, इसे कर लेना चाहिए, लेकिन अल्फाज के बारे में मोहतात रहिए, ये ज़रूर से कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ताला के हजूर दुआ करो कि अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे, वो सुन्नत है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। इस न्यूमरोलॉजी परमिसिबल और प्रोहिबिटेड इन इस्लाम? इल्मुल एदाद की बात है। अल्लाह ताला के अहकामात इस सिलसिले में बड़े वाज़ेह हैं। वो लोग जो मुस्तकबिल के बारे में पेशगोईयां करते हैं, मुस्तकबिल की बातें आपको बताते हैं, वहां जाना मना है, उनके पास मत जाइए। इल्म अलैदात अगर मुस्तकबिल की पेशगोईयों, मुस्तकबिल का अहवाल बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और आप भी इसी नीयत से जा रहे हैं तो गलत है, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी को अगर उसे बहसियत इल्म के आप देख रहे हैं और उससे इस किस्म का कोई काम नहीं लेते, तो इल्म की हद तक तो उसे देख लेना मुनासिब है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल की पेशगोईयां और मुस्तकबिल का हाल बताने वालों के पास जाने से मना फरमाया है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। सवाल ये खूब सवाल है कि व्हाट इज कंसेप्ट हिस्ट्री ऑफ कलंदरशिप एंड हाउ इट वाज अचीव्ड बाय द नोन कलंदर्स। दर हकीकत कलंदर कोई सिलसिला नहीं है, जैसे तसव्वुफ के दूसरे सिलसिले हैं, अफ्रीका और अरब ममालिक में शाज़लिया सिलसिला बहुत ज्यादा राइज है। बरे सगीर में चार मशहूर सिलसिले हैं, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया और चिश्तिया। इस तरह का ये कोई तसव्वुफ से मुताल्लिक कोई सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला किसी भी फकीर के एक सर्टन वे ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करता है। मैं फिर दोहरा देता हूं जुमला के, किसी भी फकीर के एक सर्टन टाइप ऑफ वे ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करता है। फकीर भी मुख्तलिफ वे ऑफ लाइफ से जिंदगी गुजारते हैं और इस सिलसिले की इब्तदा हजरत अली करमल्लाह वजह की हयात तैयबा से हुई है और حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی قلندر اعظم ہیں. جب انسان ایسے مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں کسی دکھ یا کسی تکلیف پر وہ رنجیدہ نہیں ہوتا, دکھی نہیں ہوتا, اسے بھی بڑی ہنسی خوشی لیتا ہے. کسی اچیومنٹ پر, کسی چیز کے حاصل ہونے پر خوش نہیں ہوتا, اور کسی دنیاوی چیز سے قطعی طور پر محبت نہیں پالتا, تو وہ قلندرانہ رنگ اختیار کرتا ہے. جو کوئی اس زندگی کو پوری طرح پا گیا, اس وے آف لائف کو پوری طرح اس نے اپنا لیا, تو وہ قلندر کہلائے گا. لیکن یہ انتہائی دشوار ہے. دنیا کی محبت دل سے نکل جانے کے باوجود کچھ چیزوں کی محبت باقی رہ جاتی ہے, یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں دنیاوی چیزوں سے محبت کا کوئی شائبہ باقی رہ جاتا ہے. ہر فقیر کے دل میں ہوتا ہے تھوڑا بہت, اور کچھ نہیں تو جسم پر پہنے ہوئے آخری کپڑے کو بھی کسی کو تحفتاً دیتے ہوئے دل میں خیال آ جائے گا کہ میں دے رہا ہوں, خود کیا پہنوں گا. یہ خیال آ جانا بھی قلندرانہ وے آف لائف کے خلاف ہے. انسان ان چیزوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے. وہ آرام سے جسم کی قمیض اکلوتی اپنی اتار کر دوسرے شخص کو تحفے میں دے دے گا کہ لو بھائی یہ لے جاؤ, اور نہ تو کہیں دل میں یہ خیال ہوگا, نہ کہیں ایٹ دی بیک آف ہز مائنڈ یہ چیز کہیں کلک کر رہی ہوگی یا کہیں سر اٹھا رہی ہوگی کہ صاحب میرا جسم کا اوپری حصہ برہنہ ہو گیا, کوئی آ گیا تو کیا ہوگا. وہاں ایک ایمان یہ ہے کہ میری تمام ذمہ داری میرے رب کے ذمہ ہے. اس کو معلوم ہے کہ میرا جسم کا اوپری حصہ برہنا ہو گیا, اور میری حیا اسے گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کے سامنے اس حال میں چلا جاؤں, تو میرا رب ضرور دے گا. تو یہ قلندرانہ رنگ ہے. اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں لوگ, بہت سے فقیر ملیں گے اس رنگ میں رنگے ہوئے, لیکن اسے 100% اچیو نہیں کر پاتے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے. تو یہ تین ہی حضرات تھے جو اب تک نون ہیں اس سلسلے میں کہ وہ اس مقام کو 100% پہنچ پائے. جناب حضرت بی بی رابعہ بصری, جناب حضرت شرف الدین بو علی قلندر صاحب, اور جناب شہباز لال قلندر, یہی اس مقام کو پہنچ پائے. اس لیے جب ہم بی بی رابعہ بصری صاحبہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے. چور جو گھر میں چوری کرنے آیا تھا تو بی بی صاحبہ نے سلام پھیر کے وہ خالی ہاتھ جاتے دیکھا تو اسے کہا کہ بھائی بہن کے گھر سے خالی نہیں جاتے, یہ وضو کا لوٹا لیتے جاؤ تم. یہ تھا قلندرانہ رنگ. اس مقام کو پہنچنا دشوار ہے, بہت دشوار ہے. اکلوتا جوان بیٹا انتقال کر جائے, اس کی موت کی خبر آئے تو دو نفل نماز پڑھ کے وہ بیٹے کی لاش اٹھانے جاتے ہیں. قلندر ہیں, یہ قلندرانہ رنگ ہے. اس سلسلے کی ابتدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات مبارک سے ہوئی ہے، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی قلندر اعظم ہیں۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فقیر کے درد سے سوال نہ کرنے والا طالب خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیر کے در پر حاجت روائی کے لیے جانے والا بندہ تو ایسے ہی شرک میں مبتلا ہو گیا کہ کسی غیر اللہ کو یہ سمجھ لینا کہ وہ حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ کسی مسلمان کا ہاتھ دست سوال کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے دراز نہیں ہوتا۔ حاجت روا صرف اور صرف رب کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فقیر کی کیا مجال ہے کہ یہ سوچ بھی لے کہ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے؟ بہت عاجز اور حقیر بندہ ہے فقیر رب کا۔ یہ صرف رب کو سزاوار ہے کہ اپنے بندوں کی حاجت روائی کرے، ان کے سوال پورے کر دے، ان کی دعائیں سن لے، ان کی دعائیں پوری کر دے، ان بندوں کی دعائیں قبول کر لے۔ صرف اور صرف یہ رب کو سزاوار ہے فقیر۔ تو جو شخص خود ہماری طرح رب کا محتاج ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں فقیر کے در پر سوال کرنے کے لیے جانے والا تو ویسے ہی شرک کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ فقیر کے پاس جائیے اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ضرور ملیے، اس سے اللہ کے حضور دعا بھی کروائیے اگر اپنے لیے کرانا چاہتے ہیں آپ۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے یا کوئی آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے، آپ کا کوئی سوال پورا کر سکتا ہے، یہ مت سمجھیے، یہ شرک ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کا محتاج اور حقیر بندہ ہے رب کا، ہماری طرح وہ بھی مجبور ہے رب کی قدرت کے سامنے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ صرف رب ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہیں، یہ صرف رب ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کوئی بندہ خواہ کسی مقام پر فائز ہے، اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی طاقت حاصل نہیں۔ ہاں البتہ وہ صرف اور صرف رب کے حضور گڑ گڑا سکتا ہے۔ انہی صاحب نے وہ کہنا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب طلب مرید کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے مرشد صاحب استعداد ہیں یا نہیں، ایسے میں وہ اپنی طلب کا کاسا بھرنے کے لیے کیا کرے؟ کئی ایک موقعوں پر میں نے گزارش کی تھی اس سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صرف اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے جہاں اس کا دل مطمئن ہو اور اندر سے یہ آواز اٹھے کہ مجھے ان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے، وہاں دل کی آواز سنیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو سائنس کی زبان میں لٹمس ٹیسٹ ہے، اس کا فوری فوری نتیجہ آپ کو مل جائے گا لمحوں میں۔ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جس فقیر کے پاس آپ گئے ہیں اس آدمی سے مل کر آپ کو روحانی خوشی حاصل ہونی چاہیے، ایک عجیب سی سرشاری آپ کو محسوس ہوگی، سرخوشی کا احساس ہوگا۔ اور دوسری چیز جو آپ کو اس سے محسوس ہوگی وہ کشش ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس شخص کے پاس دوبارہ بھی جاؤں، اس سے ملوں، کش پیدا ہوگی آپ کے دل میں اس کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں یہ مت سمجھیے کہ اس فقیر کی خوبی ہیں، نہیں، بلکہ ये उस कलाम का असर है, रब ताला के कलाम का, जिसको वो विर्द करता है, जिसका वो जिक्र करता है। ये रब ताला का कलाम है जिससे दिलों को सुकून हासिल होता है। और रब ताला के कलाम में याद रखिए कशिश बहुत है। जो शख्स भी रब ताला के कलाम का विर्द रखता है, उसके जिस्म से और खास तौर पे उसके माथे के दरमियानी हिस्से से, जिसे हिंदू माइथोलॉजी में थर्ड आई कहा जाता है, उस एरिया से वाइब्रेशंस निकलती है। उन वाइब्रेशंस के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो शख्स आ जाए, उसे वो सरखुशी और सरशारी का एहसास होगा और उसे कशिश महसूस होगी उस आदमी के बारे में जहां वो गया था कि मैं इसके पास बार बार जाऊं। ये उस कलाम का एजाज है जिसका वो विर्द कर रहा है। दूसरा लॉन्ग टर्म टेस्ट है। हमने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि जिस शख्स ने हमें नसीहत की, एक तो हमने कभी नसीहत पर अमल नहीं किया, हम दिल में चिढ़ गए, और दूसरा हम उस आदमी से दूर भागने लगे जो हमें नसीहतें करता है। ये याद रखिए कि फकीर बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। ये उसके अंदर चीजें खुद बखुद पैदा होती हैं उस कलाम इलाही के नतीजे में जिसका वो जिक्र कर रहा होता है, उस इल्म लुदनी के नतीजे में जो उसे परवरदिगार अता फरमाता है। फकीर किसी को नसीहत नहीं करता, बल्कि अपनी जात को ऐसी मकाम पर ले जाता है जहां वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। थ्रू पर्सनल एग्जाम्पल वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। बगैर उसके नसीहत किए उसके पास जाने वाला खिलाफी इस्लाम चीजों को रफ्ता रफ्ता छोड़ता चला जाता है और इबादात का पाबंद होने लगता है। लेकिन ये रफ्ता रफ्ता होता है, इसमें वक्त लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि लंबे अरसे का टेस्ट है दूसरा। तो जहां से ये दो चीजें आपको महसूस हो रही हों, दो चीजें हासिल हो रही हों, समझ लीजिए कि वो साहिब इल्म है, वो फकीर है। ये एक उसकी पहचान है। तो ऐसे शख्स को साहिब इस्तादाद समझ लीजिए, कम से कम इल्म की हद तक तो वो साहिब इस्तादाद है, अगर इख्तियारात में ना सही तो वहां से आपको इल्म जरूर हासिल हो जाएगा, सीख पाएंगे आप। अगला सवाल है कि क्या एक ही वक्त में एक से ज्यादा साहिबान दुआ से रजू किया जा सकता है, इसमें बेअदबी या नापसंदीदगी का पहलू तो नहीं है? दुआ के लिए तो आप सबको कहते रहिए। अब ये दुआ के लिए कहने वालों की हिम्मत और जर्फ की बात है कि वो किस दुआ के लिए कह रहे हैं दूसरों से। मुझे मौका मिला कई बार कई साहिब इल्म हजरात के पास जाने का, तो उठते हुए उन्होंने अज़राए अखलाक, अज़राए मरवत मुझसे पूछा कि साहब हमारे लिए कोई खिदमत, कोई हमारे लिए हुक्म। तो मैंने धार से उनसे कहा कि साहब दुआ कर दीजिए। किस चीज की? अब यहां आके मेरी हिम्मत और मेरा ज़र्फ मेरे आड़े आया तो मेरी जुबान से बेसाख्ता निकलता रहा कि दुआ कर दीजिए, अल्लाह 2-4 लाख रुपया दे दे मुझे। इससे ज्यादा मैं कह ही नहीं सका। लेकिन ऐसे साहिबान को भी मैं जानता हूं जिनको कोई फकीर कहे कि मैं दुआ कर देता हूं कि तुम्हें बादशाहत मिल जाए इस मुल्क की, तो उन्होंने फौरन कह दिया कि मैं उसे क्या करूंगा, मेरी ठोकरों पर पड़ी ये बादशाहत। तो दुआ ये कीजिए कि रब मुझे दोस्त बना ले और वो मेरा दोस्त हो जाए, कह के चले आए। तो मैं सारे रास्ते उनके कान खाता आया कि अभी दोस्ती लेके क्या करोगे मियाँ, तुम रब का दोस्त तो चिथड़ों में फिरता, फाके करता, कोई लॉटरी का नंबर ले लिया होता उससे, घोड़े रेस के घोड़े के नंबर ले लिए होते, वो मान के ही नहीं दे रहा मेरी बात। तो ये दुआ कराने वाले के अपनी जर्फ और हिम्मत की बात है कि कैसी दुआ के लिए कहता है। तो जरूर जाइए, लेकिन अगर आप बैत कर लें तो फिर हम पर कानून लागू हो जाएगा रूहानियत के सिलसिले का, और वो कानून ये है कि हम पे पाबंदी हो जाएगी कि हम दुआ के लिए सवाए अपने मुर्शिद के किसी को न कहें। हम जाएं सभी साहिबान इल्म के पास, उनकी इज्जत भी करें, उनकी खिदमत भी करें जो हम में सकत है, जिस जिस तरीके से हम उनकी खिदमत कर सकते हैं, लेकिन दुआ के लिए जब कहना हो तो खुद अपने मुर्शिद से क्या कहें, फिर दूसरों से न कहें, वहां पर वो कानून लागू हो जाता। और जब तक आप आजाद हैं बैत नहीं की, उस वक्त तक जिससे जी चाहे कहते रहिए। मुर्शिद के हजूर हाजिरी के वक्त मुरीद को किन बातों का बिलखसूस ख्याल रखना चाहिए, हाजिरी के आदाब क्या हैं? जैसे मैंने अर्ज किया कि मुर्शिद को गौर से देखते रहिए और उनकी नकल करते जाइए तो मंजिल को पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट उस मकाम को जा पहुंचेंगे जहां आपके मुर्शिद थे, अगर आपने गलतियां ना की रास्ते में। तो मुर्शिद को ऑब्जर्व करने के लिए इतनी बारीकी के साथ कि उनको नकल किया जा सके, ये जरूरी है कि हम मुर्शिद को बगौर देखते रहें, उनके तौर तरीकों का मुताला करते रहें बगौर, फिर जो कुछ वो फरमाते हैं उसे बगौर सुने भी। ये सब करने के लिए हमें मुर्शिद के पास खामोशी से बैठना पड़ेगा। तो मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि जब हम मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हों तो अपनी जुबान को ताला लगा लें, अपनी अक्ल को घर छोड़ाएं, सिर्फ आंखें खुली रखें और कान खुले रखें। हाँ अलबत्ता कहीं कहीं ऐसा लुकमा दे दीजिए बात में कि जिससे आपके मुर्शिद मजबूर हो जाएं कि वो बोलते रहें। तो जितना मुर्शिद आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना इल्म उनके अंदर जो खजाना मौजूद है वो उगलते रहेंगे और वो आपके कानों के जरिए आपके दिल और दिमाग में उतरता जाएगा और यूं आप इल्म हासिल करते चले जाएंगे। जितना आप मुर्शिद की महफिल में बैठ के बोलेंगे उतना मुर्शिद खामोश रहेगा और इल्म आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मुर्शिद के हजूर खामोशी और तवज्जो से सुनना और तवज्जो से देखना ये लाजमी अमर है अगर हम मुर्शिद से इल्म लेना चाहते हैं। तो दूसरी चीज अदब है। अगर हम खुद अपने आप को देखें, हमारे घर पर आने वाले या हम जहां मेहमान गए हैं वहां पर हमें मिलने वाले बच्चे या साहिबान जो मुअद्दब हैं, हमारी इज्जत करते हैं और वेल मैनर्ड हैं, वेल एटिकेटेड हैं, हमें वही आदमी पसंद आता है। ज्यादा जो बोले या ओछी हरकतें करे हम उसे पसंद नहीं करते। मुर्शिद भी इंसान है, तो जब आप मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हों तो वहां अदब और आदाब दोनों चीजों का خیال رکھیے. تو اگر ہم صرف یہ دو کام کر گئے کہ مرشد کے یہاں حاضر ہوتے وقت ادب اور آداب دونوں کا خیال رکھا ہم نے, اور مرشد کی خدمت میں جب تک حاضر رہے, خاموش رہے, اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال خوب کیا, اتنا ہی ہم پھل پا لیں گے. ایک سوال ہے, کیا قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ سب یہ قبر کا عذاب, میں پھر گزارش کروں گا کہ جو چیزیں قرآن میں واضح طور پہ بیان کی گئی ہیں ان پر کوئی اظہار خیال کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کا فرمان ہے, برحق ہے, اس میں سوئی برابر کوئی نہ شک ہو سکتا ہے نہ فرق آ سکتا ہے. تو جب رب نے فرما دیا تو اس میں کسی کے وضاحت کی ضرورت ہے نہیں, قبر کا عذاب ہوتا ہے یا نہیں اس میں شک کیوں ہے؟ جب ہمارے رب نے یہ فرما دیا کہ قبر کا عذاب ہے اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے تو پھر اس پہ کیا سوال ہے؟ تیسرا سوال اس میں ہے, حضرت ابراہیم سے جب قربانی مانگی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبے سے بدل دی گئی, یہ ریاض دے دی گئی, اور جب حضرت امام حسین کی باری آئی تو قربانی کیوں لی گئی؟ وہاں بھی تو رعایت ہو سکتی تھی. اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم کے تحت وہ قربانی کر رہے تھے, اسے کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی وہ اللہ تعالی کے حکم کے تحت پھیری گئی تھی. وہاں پہ اللہ کے حکم کو ماننے کی روایت قائم کرنا مقصود تھا کہ اللہ کا حکم اگر یہاں تک ہو جائے کہ اپنی اولاد کو اس کی راہ میں قربان کر دو تو اس سے دریغ نہ کیا جائے, یہ ایک روایت قائم کرنا مقصد تھا, اپنے بندوں کو ایک سبق دینا مقصد تھا, اور اپنے بندوں کو بندگی کی ایک حد دکھانا مقصود تھا. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی اولاد کی قربانی کرنے کو کہہ دیا گیا, لیکن اللہ چونکہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, دکھ نہیں پہنچاتا, اللہ اپنے بندوں کو ان کا سکھ دیکھنا چاہتا, ان کو سکھی رکھنا چاہتا, تو اسی لیے ایک باپ کو اس صدمے سے بچانے کے لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا, اسے دمبے میں تبدیل کر دیا گیا, یہ اس کی رحیمی صفت رحیمی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہے. آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ میدان کربلا میں چلے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کی قربانی وہاں دے دو, حکم نہیں آیا تھا. یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا کہ وہ اسلام جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور ایک ایسی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس کا اثر تمام امت پر آئے گا, تمام امت اس سے متاثر ہو جائے گی, और रफ्ता रफ्ता शायद इस्लाम की शक्ल बदल दी जाए। तो अल्लाह के दीन को अपनी असल हालत में रखने के लिए ये फैसला अज खुद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया कि मैं इस बुराई के खिलाफ जहाद करूंगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि बुराई के खिलाफ जहाद करो। ये फैसला खुद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एट हिज फ्री विल किया था। तो इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ अपनी जान कुर्बान कर दी बल्कि अपने अहल खाना को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, सिर्फ इस दीन को सही हालत में रखने की खातिर। तो इन दोनों में ये फर्क है, वो हस्बे हुक्म कुर्बानी थी, यह हस्बे मर्जी अपनी मर्जी से थी, इट इज फ्री विल। ये दोनों में फर्क है। एक और खासा तवील सवाल है कि हम पहले आलम अरवाह में थे, फिर खास टाइम के आने तक हमें जिस्म का लिबास दे दिया गया, उसके बाद आर्जी जिंदगी के बाद एक मुस्तकिल जिंदगी की तरफ का सफर, असल का सफर, मतलब हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे, बाद में भी रहेंगे मुस्तकिल जिंदगी, पहले बरज़ख फिर जन्नत या जहन्नुम। तो पूछना यह है कि हम किस फॉर्म में रहेंगे, जिस्म या रूह? अगर जिस्म तो जिस्म की वही जरूरियात होंगी, और अगर हम रूह की फॉर्म में चले गए तो अल्लाह पाक फिर किस तरह ये सब किस फॉर्म में मिलेंगे, और क्या हम रोज रब ताला को देख और मिल सकेंगे? और जिस्म तो नहीं होगा क्योंकि हजरत मूसा और कोहे तूर दोनों हमारे सामने हैं। कभी कभी यूं नहीं लगता कि बंदा ये जिस्म का खोल उतार कर रूह को आजाद होने दे? एक तो रब ताला से बंदगी का रिश्ता हुआ, और एक ऐसा लगता है जैसे इंसान मकनातीस की तरफ खींचता चला जाता है, यूं वो अपने असल की तरफ भागने लगता है बेबस सा होकर, हालांकि सामने तो कुछ भी नहीं होता। मैं इस सवाल को समझ नहीं सका कि दर हकीकत इतना सा एक हिस्सा जो समझ में आता है कि हम किस फॉर्म में रहेंगे। जिन दिनों यहाँ इस मौजू पर गुफ्तगु हो रही थी कि तख्लीक रूह इंसानी, तो उस वक्त मैंने गुजारिश की थी कि रूह आलम बाला में है, जब उससे मुतालिक जिस्म जमीन पर वजूद में आने लगता है, उसकी तमाम स्टेजेस मैंने पिछले दिनों मैंने अर्ज की थी आपकी खिदमत में। तो उस रूह को ज़मीन पर भेज दिया जाता है और जिस्म में उसे दाखिल कर दिया जाता है, ये काफ़ी तफसील से हमारी गुफ्तगु हुई थी। मरने के बाद यही रूह उस जिस्म से आज़ाद हो जाती है और आलम बरज़ख में चली जाती है। सूरह यासीन में भी है कि हम अपनी अपनी आराम गाहों से उठाए जाएंगे, कब्रों से उठाए जाएंगे, और वो बहालत जिस्म कहा गया है, से मुराद बहालत जिस्म है। जो परवरदिगार इस चीज पर कादिर है कि हमें ये जिस्म अता फरमा दे और इस जिस्म से मुतलका रूह हमारे जिस्म में दाखिल कर दे, दुनिया में जब हम आए तो इस हालत में आए कि हमारे जिस्म पर कपड़े का एक चीथड़ा भी ना हो और हम अपने जिस्म से एक मक्खी उड़ाने पर भी कादिर ना हो, तो अपनी कुदरत के सदके हमें पाले और पालकर इस हाल को पहुंचा दे कि हम ये समझने लगे कि हम अपनी ठोकर से पहाड़ को भी उलट देंगे, और रफ्ता रफ्ता वो फिर हमें उस कैफियत में ले जाए कि जहां हम बगैर लाठी के सहारे के चल भी ना सकें। तो इसी तरह वो हमें कब्रों से खड़ा करने पर भी कादिर है, और उसके बाद हमें जिस हाल में वो रखे, तो वहां हमें इन जिस्मानी जरूरियात से आजाद कर दे, जिन जिस्मानी जरूरियात के आज हम गुलाम हैं, इस पर भी कादिर है। ये जिस्म और ये जरूरियात हमारी, मैं ये जुमला इस तरतीब में यूं कह रहा हूं कि जमीन का वजूद पहले था, इंसान जमीन पर बाद में उतारा गया, कि हमारे जिस्म की जरूरियात इस जमीन के वसाइल के मुताबिक बनाए। तो वो इस पर भी कादिर है कि हमारे जिस्म की जरूरियात जन्नत या जहन्नम के माहौल के मुताबिक बना दे, यकीनन कादिर है और ऐसे ही करेगा। इसलिए हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि वहां हमारी जिस्मानी जरूरियात का क्या बनेगा, रब ताला यकीनन हर चीज पर कादिर है।